स्वागत है आपका दिनभर में। आज है 6 मार्च दिन मंगलवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। बौद्धों और मुस्लिमों के बीच हिंसा और तनाव के बाद श्रीलंका में लगा आपातकाल। त्रिपुरा में बीजेपी और आईपीएफटी का मतभेद खत्म। विप्लव कुमार देव होंगे मुख्यमंत्री और जिष्णु देव बर्मन डिप्टी सीएम, लेकिन लेनिन की मूर्ति तोड़े जाने को लेकर गर्म है राजनीति।
बिलोनिया और त्रिपुरा में के ऐसा कोई माहौल है नहीं। यहाँ की बिलोनिया म्यूनिसिपल एरिया में महात्मा गांधी जी की है, भगत सिंह जी के है।
यूनिसेफ की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दशक में बाल विवाह की संख्या में भारत में आई भारी कमी।
महिलाओं की साक्षरता में बहुत ही बढ़ोतरी हुई है, तकरीबन 55% से अब से अभी 68% हो गया है।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले बीबीसी समाचार विस्तार से।
बीबीसी समाचार मोहम्मद शाहिद से। मस्जिदों और मुस्लिम समुदाय के लोगों की दुकानों पर कई हमलों के बाद श्रीलंका सरकार ने देश में आपातकाल की घोषणा की है। बौद्ध सिंगला बहुसंख्यकों द्वारा मुस्लिमों की दुकानों को आग लगाने के बाद कैंडी शहर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। एक मुस्लिम युवक की जली हुई लाश मिलने के बाद श्रीलंका प्रशासन को जवाबी हमलों का डर है। अभी अभी रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से खबर आई है कि सीरिया में रूसी सेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसमें 26 लोगों और 6 क्रू सदस्यों की मौत हुई है। अभी तक ये साफ नहीं है कि ये घटना कहां हुई और इसके कारण क्या थे। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन अपने दक्षिण कोरियाई समकक्ष मून जे इन से भारी सुरक्षा वाली सीमा पर अगले महीने मिलने के लिए राजी हो गए हैं। एक दशक से अधिक समय के बाद ये दोनों देशों के नेताओं के बीच पहली मुलाकात है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के एक सम्मेलन में किम जोंग उन और दक्षिण कोरियाई प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई मुलाकात के बाद ये फैसला लिया गया है। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि उत्तर कोरिया अमरीका से बातचीत को तैयार है और चर्चा के दौरान वो परमाणु और मिसाइल परीक्षणों को स्थगित कर देगा। एक वरिष्ठ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार अधिकारी ने कहा है कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान अभी भी व्यवस्थित और व्यापक हिंसा का सामना कर रहे हैं। बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों के कैंप का दौरा करने पहुंचे एंड्रयू गिलमोर ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक खास नस्ल के लोगों को मारा जा रहा है। कुछ दिनों पहले म्यांमार से आने वाले लोगों से मैं मिला तो उन्होंने बड़े स्तर पर जारी आतंक हत्या और रेप की कहानी मुझे बताई। इसको हम जबरन अकाल कह सकते हैं। जो लोग हिंसा से भाग नहीं पाए उनके पिछले अगस्त और सितंबर में तलाश शुरू हुई, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक नस्ल की सफाई जारी है। ये थे वरिष्ठ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार अधिकारी एंड्रयू गिलमोर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बीबीसी को पता चला है कि इंग्लैंड में एक पूर्व रूसी जासूस के साथ मृत पाई गई महिला उनकी बेटी है। 66 साल के सर्गेई स्क्रिपल के परिजनों ने बताया है कि 2010 उनके इंग्लैंड में बसने के बाद उनकी बेटी यूलिया उनके साथ रह रही थी। पुलिस ने कहा है कि दक्षिणी शहर सेलिसबरी में 2 दिन पहले एक अज्ञात पदार्थ के कारण स्क्रिपल और एक महिला गंभीर अवस्था में मिले थे, लेकिन वे अभी नहीं कह सकते कि अपराध हुआ है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि उन लोगों के साथ रहे 2 अफसरों का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं रूस का कहना है कि उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो जांच में सहयोग के लिए तैयार है।
हम देख सकते हैं कि एक दुखद घटना हुई है, लेकिन हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है कि इसका कारण क्या है, इसके पीछे कौन शख्स है और इसके तार किससे जुड़े हैं।
ये थे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता के शब्द। सीरिया में रूसी सेना ने दमिश्क के बाहर लड़ रहे विद्रोहियों को क्षेत्र से बाहर जाने के लिए एक सुरक्षित रास्ता देने का प्रस्ताव दिया है। रूस समर्थित सीरियाई सरकार के सुरक्षा बल पूर्वी गूटा क्षेत्र को वापस पाने के लिए लड़ रहे हैं। एक साल पहले अलेप्पो में हुई लड़ाई के बाद भी इसी तरह से विद्रोहियों को सुरक्षित रास्ता दिया गया था, जिसमें उनके परिवार के सदस्य दूसरे प्रांत में गए थे। पूर्वी गूटा के लड़ाकों ने किसी भी समझौते को खारिज किया है। वहीं रूस पर नागरिकों को जबरन विस्थापित करने का आरोप लगाया गया है। तुर्की ने कहा है कि वो उत्तरी सीरिया में उन 1,70,000 लोगों को शरण देने के लिए कैंप बनाने पर विचार कर रहा है जो युद्ध क्षेत्र से भागकर आए हैं। अंकारा में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इटली प्रांत में 9 कैंप स्थापित किए जाएंगे और पूर्वी क्षेत्र में भी कैंप बनाए जाएंगे जो 2016 से तुर्की सेना के कब्जे में हैं। सीरिया में युद्ध के बाद तुर्की ने 30,00,000 शरणार्थियों को अपनाया है, लेकिन हाल में उसने विस्थापितों को सीमा पर ही सुविधाएं देने का समर्थन किया है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com, मोबाइल और फेसबुक पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। श्रीलंका में मस्जिदों और मुस्लिमों के कारोबार पर लगातार हो रहे हमले के बाद देश की सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। देश के मध्यवर्ती जिले कैंडी में कर्फ्यू लगा दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक वहां बहुसंख्यक बौद्ध समुदाय के लोगों ने मुस्लिमों की दुकानों, उनके घरों और एक मस्जिद पर हमला किया है। मंगलवार को एक मुस्लिम युवक का शव एक जलाई गई इमारत में मिलने के बाद से तनाव है और अधिकारियों को भय है कि मामला गंभीर रूप ले सकता है। तनाव की शुरुआत हफ्ता भर पहले एक बौद्ध व्यक्ति की मौत के बाद हुई थी। पूरी जानकारी दे रही हैं भूमिका राय।
हिंसक झड़पों के बाद श्रीलंका में माहौल बेहद खराब है। एक जली हुई इमारत से एक मुस्लिम व्यक्ति की लाश बरामद होने के बाद श्रीलंका पुलिस ने इसे बदले की कार्रवाई का अंदेशा जताया है। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तारी के बाद बौद्ध धर्म को मानने वाले कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि गिरफ्तार लोगों को रिहा कर दिया जाए। दंगा भड़काने के अंदेशे के तहत जगह जगह पुलिस तैनात है। बावजूद इसके प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कई जगहों पर टायर जला दिए और प्रदर्शन किया। एक स्थानीय अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि इन हिंसक झड़पों में 4 मस्जिद, 37 घर, 46 दुकानें और 35 वाहनों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि सब कुछ तबाह कर दिया गया है और मुस्लिम डर के साए में हैं। प्रदर्शन कर रहे लोग कैंडी पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुए और उन्होंने गिरफ्तार लोगों को रिहा कराने की मांग की। वहीं कैंडी से मिल रही रिपोर्टों के मुताबिक बौद्ध धर्म को मानने वाले सिंगला लोगों ने कथित तौर पर मुसलमानों की दुकानों पर हमले किए और उन्हें आग के हवाले कर दिया। मामले से निपटने के लिए पुलिस ने इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है। कैंडी के पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि स्थिति और अधिक न बिगड़े इसे देखते हुए ये फैसला लिया गया है। हालांकि दोनों संप्रदायों के बीच इस तरह की झड़पों का एक लंबा इतिहास रहा है। पिछले साल बौद्ध धर्म को मानने वाले कुछ समूहों ने मुसलमानों पर उनके मठों को नष्ट करने का आरोप लगाया था। साथ ही उनका ये भी आरोप था कि वे लोगों को जबरन इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीलंका की कुल आबादी में 9% मुसलमान समुदाय के लोग हैं, जबकि बौद्धों की आबादी 70% है और हिंदू आबादी 13% है।
ब्यौरा सुना रही थी भूमिका राय। साठ सदस्यीय मेघालय विधानसभा में 19 सीट जीतने वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी NPP ने आज BJP और अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर नई सरकार बना ली है। मेघालय के कद्दावर नेता और लोकसभा अध्यक्ष रहे पूर्णो संगमा के बेटे कॉनराड संगमा ने राज्य के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ ग्रहण की। इस मौके पर BJP अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेता मौजूद थे। सुनते हैं दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।
आई कॉनराड संगमा डू सॉलेमली अफर्म दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड।
राजभवन में सुबह 10:30 आयोजित हुए इस शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कॉनराड संगमा ने कहा कि उनकी सरकार अपने गुड गवर्नेंस के एजेंडे पर बरकरार रहेगी। दरअसल मेघालय की राजनीति में बिना पूर्ण बहुमत के गठबंधन वाली सरकार चलाना हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहा है। मेघालय में इस राजनीति को समझने वाली सहायक प्रोफेसर अमंदा बसाई मोहित ने BBC से कहा,
फैक्चुअल मैंडेट जब पोल का रिजल्ट आता है और ये सबमोस्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए वो स्टेबिलिटी होना चाहिए। अनलेस देयर इज अ स्टेबल गवर्नमेंट, फिर जो इश्यूज भी है वो पॉसिबल नहीं होंगे गवर्नमेंट को अचीव करने के लिए।
दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी करने वाले 40 कॉनराड संगमा पूर्व लोकसभा अध्यक्ष PA संगमा के बेटे हैं। वे लंदन विश्वविद्यालय से कॉरपोरेट फाइनेंस की भी पढ़ाई कर चुके हैं। संगमा ने 1990 के दशक में पिता PA संगमा के प्रचार प्रबंधक के तौर पर अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। कॉनराड संगमा की बहन अगाथा संगमा मनमोहन सिंह की सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रह चुकी है। मेघालय में केवल 2 पर जीत दर्ज करने वाली BJP भले ही प्रदेश में NDA की सरकार गठन होने की बात कर रही है, लेकिन गठबंधन में शामिल अन्य क्षेत्रीय दलों के नेताओं ने कॉनराड संगमा को ही अपना नेता माना है, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी पर इस नई सरकार को हाईजेक करने का आरोप लगाया है। इस संदर्भ में मेघालय प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सिबुन लिंगदो कहते हैं,
आज प्रॉमिस बाय प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट डेवलपमेंट बिल्कुल फॉर डेवलपमेंट, क्योंकि अपना केंद्र सरकार की जो एजेंडा है ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट करप्शन फ्री गवर्नमेंट, इसे लेके हम लोग गाइड करेंगे।
मेघालय में जोड़ तोड़ की राजनीति का इतिहास काफी पुराना है। कांग्रेस के डीडी लपांग के शासन के समय भी तीन और लोगों को मुख्यमंत्री का स्टेटस मिला हुआ था। ऐसे में 60 सीटों वाले इस प्रदेश में कांग्रेस के पास 21 सीट है और 19 सीट वाली एनपीपी ने सरकार बना ली है।
जानकारी दे रहे थे दिलीप शर्मा। त्रिपुरा में बीजेपी और उसकी सहयोगी आईपीएफटी के बीच जनजातीय मुख्यमंत्री को लेकर उभरा गतिरोध फिलहाल समाप्त हो गया है और आज ये तय हो गया कि राज्य में बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले बिप्लव कुमार देब त्रिपुरा के अगले मुख्यमंत्री होंगे और जनजातीय समुदाय से आने वाले जिष्णु देव बर्मन उप मुख्यमंत्री होंगे। जनजातीय मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग पर ही बीजेपी की सहयोगी आईपीएफटी के नेता एनसी देव बर्मन ने अड़ियल रुख अपना लिया था। उनका कहना था कि ये जनजातीय लोगों की आकांक्षा है कि राज्य का मुख्यमंत्री जनजातीय समुदाय से ही हो। बीजेपी और आईपीएफटी में कैसे हुआ समझौता, यही जानने के लिए मैंने बात की अगरतला में वरिष्ठ पत्रकार जयंत भट्टाचार्य से।
पहले तो वो जो बीजेपी पार्लियामेंटरी जो टीम है इनका नेता बन गया बिप्लव देब, ये बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी का एक मीटिंग हुआ तो उसमें नितिन गडकरी वो यूनियन मिनिस्टर है और जो जुएल ओराम यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर है उन्होंने था, तो ये सब मिलके बिप्लव देब को बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी का नेता बनाया और ये यूनेनिमस हुआ। इसका बाद ही एक प्रस्ताव आया कि एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन जाना चाहिए, ये बीजेपी से ही होना चाहिए। तो जिष्णु कुमार देव वर्मा एक ट्राइबल लीडर है बीजेपी का, तो इनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर चुना गया। तो इसका बाद ये बीजेपी के साथ आईपीएफटी का एक मीटिंग हुआ तो इसमें राम माधव जी थे और सुनील देवधर जी जिन्होंने त्रिपुरा का पॉलिटिकल इंचार्ज है तो उन्होंने था, तो इसका बाद इसमें काफी बातचीत हुआ और इसका बाद एनसी देव बर्मा जो आईपीएफटी का प्रेसिडेंट है तो उन्होंने पत्रकार को बताया कि जो रिलेशन है बीजेपी का साथ आईपीएफटी का ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत कॉर्डियल है और बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जयंत भट्टाचार्य जी, मौजूदा संकट जो था चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट जनजातीय समुदाय से हो, इसको तो सुलटा लिया है बीजेपी और आईपीएफटी ने मिलकर, आगे आने वाले दिनों में क्या कोई चुनौती देखते हैं इस समीकरण को देखते हुए?
हाँ, एक्चुअली वो जो एनसी देव बर्मा ने पहले बताया था कि ये चीफ मिनिस्टर होना चाहिए जनजाति से, तो लेकिन जब बीजेपी ने जिष्णु देव बर्मा को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिया तो लगता है आने वाला दिन में वो 2019 में जब जो एमपी इलेक्शन होगा तो वहाँ पे एक चुनौती हो सकता था कि ये ट्राइबल नाराज हो सकता था, लेकिन ये सवाल अभी लगता ही नहीं उठेगा इसलिए कि जिष्णु जी को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना के ये ट्राइबल का जो डिमांड था इसको पैसिफाई कर दिया और नॉर्थ ईस्ट में ये भी मैसेज जाएगा कि एक त्रिपुरा जैसा स्टेट है जहाँ पे नॉन ट्राइबल मेजोरिटी है तो वहाँ पे भी ये जिष्णु देव बर्मा जैसा एक ट्राइबल आदमी को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिया, तो मेरे को लगता है आने वाला दिन में ये कोई ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला नहीं।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार जयंत भट्टाचार्य, जिनका कहना है कि जिष्णु देव बर्मन को उप मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने जनजातीय वोट बैंक की नाराजगी को फिलहाल सुलझा लिया है। उधर त्रिपुरा में बीजेपी की जीत के बाद से ही कथित तौर पर सीपीएम कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले दो दिन में कई दुकानों और इमारतों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई और ताज़ा मामला दक्षिणी त्रिपुरा के बेलोनिया में सेंटर ऑफ कॉलेज स्क्वायर पर लगी लेनिन की प्रतिमा का है जिसे बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। बीबीसी संवाददाता सलमान रावी उस टूटी प्रतिमा वाली जगह पहुंचे और वहां उन्होंने लोगों से बात की।
ये दक्षिण त्रिपुरा का बेलोनिया का ये छोटा सा कस्बा है, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। कल जब ये यहाँ पर तोड़ा गया इस मूर्ति को लाकर, लोग भी सड़कों पे कम हैं, शायद स्वाभाविक है थोड़ा सा दहशत का माहौल होगा, इक्का दुक्का लोग यहाँ पे घूम रहे हैं। वक्त हो रहा है 5 बजे का जबकि गहमा गहमी होनी चाहिए। मेरे साथ यहाँ पर खड़े हैं बहुत सारे कार्यकर्ता जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ।
दीपांकर सेन, मैं CPIM को लीडर है।
हुआ क्या ये बताइए।
लेनिन मूर्ति था इधर 2015 में ये बियुनिया म्यूनिसिपालिटी डेट टाइम आई वॉज इन द चेयर एज ए चेयरमैन
जी,
उस टाइम में ये बनाया, ये मूर्ति था इधर, लेकिन ये जो बीजेपी गवर्नमेंट किया 3 मार्च उसको जो हुडलूम्स था उसको वो आया यहाँ पे ड्रजर लेके आए
ये डोजर किसका था ये?
ड्रजर तो एक ड्रजर ही था इधर, हाँ ड्रजर लेके आया ये तोड़ने के लिए।
नहीं, कौन लोग हैं ये जो करने वाले लोग हैं बेसिकली?
ये तो बेसिकली भारत माता की जय बोल के देके आया है और ड्रजर लेकर आया, आके ये उतर दिया। लेकिन हमारा यहाँ पे बिलोनिया और त्रिपुरा में लगभग 25 साल के घर के ऐसा कोई माहौल है नहीं थी। यहाँ की बिलोनिया म्यूनिसिपल एरिया में महात्मा गांधी जी की है, भगत सिंह जी के है, सुजर सेन की भी है, एक लेनिन का भी ये स्टैचू बना हुआ है।
अब जो है मैं ये जानना चाह रहा था कि ये छोटी सी जगह है बिलोनिया, यहाँ इतना तो तनाव होना नहीं चाहिए आपस में किसी
नहीं तो ये आना चाहिए, ये तो पीसफुल था।
हाँ,
2 तारीख तक यह पीसफुल था, कोई हंगामा नहीं, कुछ नहीं। ये तो फैसिस्ट दल है ये बीजेपी जो।
लेकिन कहाँ से, क्या बाहर के लोग थे?
नहीं, बाहर का नहीं, ये टाउन का लोग है, उनको लीडर भी था इधर।
तो पुलिस से आपने प्रोटेक्शन मांगी?
पहले जब ये तुरा तब तो पुलिस नहीं था, आप देखिए नजदीक में उसका कैम है 100 मीटर में, ये पुलिस सुपरिंटेंडेंट ऑफिस है, डीएम ऑफिस में, लेकिन पुलिस कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया। बाद में आया तो जो ड्रजर बुलडोजर का ड्राइवर है उसको पकड़ लिया, लेके गया। लेने के बाद बीजेपी का सब कार्यकर्ता थाना में जाके उसको छुटा के ले गया,
जहां पर इस तरह की वारदात हुई। लेकिन लोगों को उम्मीद है कि हालात सुधरेंगे, चूंकि सर्वदलीय बैठक पुलिस ने बुलाई है, प्रशासन के लोगों ने बुलाई है। सलमान रावी, बीबीसी।
ये थी बेलोनिया से सलमान रावी की रिपोर्ट।
दिन भर शॉर्टवेव 49, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 9510, 9540, 11945 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व भर में बाल विवाह में भारी कमी आई है। पिछले दशक में करीब 2.5 करोड़ बाल विवाहों को रोकने में कामयाबी मिली है। यूनिसेफ की इस रिपोर्ट के मुताबिक एक दशक पहले हर 4 में से 1 बच्ची 18 साल की उम्र से पहले बाल विवाह के दलदल में धकेली जाती थी, लेकिन अब यह संख्या घटकर हर 4 में से 1 लड़की की रह गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दक्षिण एशिया में बाल विवाहों की संख्या में सबसे ज्यादा कमी आई है। भारत के आंकड़ों में आई कमी को समझने के लिए मैंने बात की भारत में यूनिसेफ से जुड़ी अरूपा शुक्ला से।
भारत के संदर्भ में बाल विवाह के बारे में अगर बात करें तो जो NSHS की जो सर्वे हुई थी 2005 में 6 में, उसके तहत तकरीबन 47% बाल विवाह उस समय देखा गया था, जो घटकर के पिछले 10 सालों के अंदर यानी कि 2015-16 का जो NSHS सर्वे है उसमें बता रहे हैं कि तकरीबन ये 27% हो गया है, प्रतिशत हो गया है भारतवर्ष के लिए। ये बहुत ही ज्यादा अनुमान के तहत अगर देखा जाए तो घटौती हुई है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए।
क्या वजह रही होंगी इसके लिए?
कई सारी वजह हैं, जिनमें से आमतौर पर अगर हम देखें जो मूल वजह हैं वो है, सबसे पहले है कि महिलाओं की साक्षरता में बहुत ही बढ़ोतरी हुई है, तकरीबन 55% से जो कि 2005 में था तब से अभी 68% हो गया है। और दूसरी चीज जो है कि महिलाओं की जो संख्या जो कि कम से कम 10 साल तक का उन्होंने स्कूलिंग किया है, ऐसा ये जो संख्या है ये काफी बढ़ गई है, जो कि कम से कम जिन्होंने 10 साल स्कूलिंग की है ऐसी महिलाओं का। और साथ ही साथ जो तीसरा वजह है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर हम स्कूल या शिक्षा की जो पहुंच की बात करें तो ये इस तादाद में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। खास तौर से अगर हम 6 से 13 साल की उम्र के बच्चों के बारे में देखेंगे तो ये संख्या जो स्कूल पहुंच रही है ये इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो ये कुछ आम वजह है जो मूलतः इस चीज को शायद पुश किया होगा।
ये थी भारत में यूनिसेफ से जुड़ी अरूपा शुक्ला, जो बता रही थी कि महिलाओं की साक्षरता में बढ़ोतरी से भारत में बाल विवाह की संख्या में कमी आई है। आगे बढ़ते हैं। इस साल गर्मियों में गुजरात में पानी की भारी कमी हो सकती है, पानी के स्रोत सूख रहे हैं, लोग परेशान हैं। ऐसे में एक स्थानीय गायक ने पानी बचाने के लिए एम्प्टी बकेट चैलेंज नाम के एक सोशल अवेयरनेस कैंपेन की शुरुआत की है। इस कैंपेन का मकसद पानी के महत्व को समझाना और उसे बचाने की दिशा में काम करना है। इस कैंपेन की शुरुआत कैसे हुई और इसका क्या कुछ असर हुआ है, यही जानने के लिए मैंने बात की बीबीसी गुजराती सेवा के अपने सहयोगी दीपक चुड़ासमा से।
ये एम्प्टी बकेट चैलेंज है जो गुजरात में अभी नई नई शुरू हुई है, वो सूरत का एक लोकल सिंगर है यतिन सांगोई करके, उसने अपनी तरह से ये शुरू किया था। उसका कहना है कि मुझे इस आइडिया एम्प्टी बकेट चैलेंज का आइडिया आइस बकेट से आया था, कि इसमें वो आप सिर्फ जितने लोग उसके साथ जुड़ रहे उसको सिर्फ ये करना है कि आप सिर्फ बकेट उठाओ और इसमें पानी ना हो, खाली बकेट को अपने माथे पे रख के आप इसे एम्प्टी बकेट चैलेंज को लो और पानी बचाओ। तो अभी गुजरात में पानी की बहुत सारी तंगी है, तो इसलिए उसने ये जुम्बेश शुरू की थी कि इसमें जैसे लोगों में बहुत जागृति आए कि पानी की। तो अभी सोशल मीडिया पे उसका बहुत सारा रिस्पांस उसको मिल रहा है, तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे उसके साथ जुड़ रहे और अभी इस जुम्बेश को आगे ले जाने के लिए और एक और वीडियो शूट कर रहे हैं, जिससे होली के पश्चात भी अभी जो समर आ रहा है तो इसमें पानी की तंगी बहुत होगी गुजरात में, तो इस तंगी को ध्यान में रख के, इस किल्लत को ध्यान में रख के वो अभी इस जुम्बेश को आगे ले जा रहा है।
दीपक, पानी की कमी की जो परेशानी है गुजरात में, उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं ये साहब, ये बताइए कि कितनी बड़ी कमी है गुजरात में, कितना बड़ा पैमाना है इसका और कौन कौन से क्षेत्र हैं जो प्रभावित हैं?
अभी गुजरात में इस साल पानी की बहुत किल्लत में, बहुत कटौकटी जैसी सिचुएशन अभी खड़ी हुई है। राज्य सरकार ने भी संज्ञान लेते हुए एक ताकीद पे एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सबको और हर जिला कलेक्टर को उसको आदेश दिए गए हैं कि अपने रीजन में वो हर हफ्ते पे वो पानी का एक रिव्यू करे और रिव्यू राज्य सरकार को भेजे। अब इसकी बात करके कितने पैमाने पर, बड़े पैमाने पर है, तो सबसे बड़ा जो रीजन है सौराष्ट्र और कच्छ और नॉर्थ गुजरात, वो नर्मदा डैम पे ही आधारित है उसका पानी। और बहुत सारे जो वहाँ के किसान है, किसान की जो सिंचाई होती है वो नर्मदा की मुख्य केनाल से होती है। तो अभी सरकार ने ही अनाउंस करके बोल दिया है कि इस समर में किसी किसान को सिंचाई का पानी नहीं मिलेगा। सिर्फ सरकार अभी पीने का पानी देने के लिए ही तैयार है, कभी किसी को सिंचाई का पानी नहीं मिलेगा। अगर किसान कुछ भी बोए तो अपनी जिम्मेदारी पे वो कुछ भी बो सकते हैं, सरकार उसको पानी नहीं देगी। दूसरी चीज ये है कि गुजरात के जो डैम है उसमें से बहुत सारे डैम में 50% से भी पानी कम हो गया है, तो 50% पानी अभी से ही कम है और आने वाले समर में गुजरात में बहुत पानी की जरूरत पड़ेगी। तो अभी बात ऐसी है कि जो सरकार है, जब वो सत्ता में आई थी तब वो बात ऐसे कर रही थी कि टैंकर राज हम खत्म करने जा रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने ही आदेश दिए हैं कि हम टैंकरों से बहुत सारे गांवों में पानी पहुंचाएंगे।
ये थे बीबीसी गुजराती सेवा के हमारे सहयोगी दीपक चुड़ासमा।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
हरियाणा के झज्जर में रहने वाली 16 साल की मनु भाकर ने शूटिंग में 2 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। मनु ने यह मेडल मेक्सिको में चल रहे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के शूटिंग इवेंट में जीता। पहला गोल्ड मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में जीता और दूसरा गोल्ड 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में हासिल किया। सुनिए सरोज सिंह की रिपोर्ट।
कभी बॉक्सिंग, कभी कबड्डी और कभी जूडो तो कभी रेसिंग, हरियाणा के छोटे से जिले झज्जर में पली बढ़ी मनु भाकर 6 साल की उम्र से कई तरह के खेल में अपना हाथ आजमा चुकी हैं। मनु के साथ सबसे मजेदार बात ये रही कि कई खेल में तो वो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल तक गई हैं, लेकिन जिस खेल को 2 बरस पहले खेलना शुरू किया मनु ने आज उसमें देश के लिए 2 गोल्ड मेडल जीतकर नया कीर्तिमान दर्ज कर लिया है। ये खेल है शूटिंग का। मनु के पिता रामकिशन भाकर कहते हैं कि पहली बार जब मनु ने पिस्टल खरीदने की बात कही तो उनके मन में भी कई सवाल थे।
ये पिस्टल ला दो पापा, मेरी 15 दिन के बाद उसने कह दिया था कि हाँ मैं ये गेम करूंगी, तो मैंने इसकी मम्मी से कहा था कि ये ऐसा ना हो कि हम 1.5 लाख रुपए लगाते इस पे और फिर ये जो है ना बाद में बैकअप कर जाए तो फिर अननेसेसरी वेस्ट हो जाएगा पैसा। तो मनु ने अपनी मम्मी को अश्योर किया, नहीं पापा ऐसा नहीं है, मैं इसको करूंगी।
मनु फिलहाल 11वीं में पढ़ती है, वो पढ़ाई में भी अच्छी है। मनु का बड़ा भाई उससे 2 साल बड़ा है और फिलहाल IIT की तैयारी कर रहा है। उनकी माँ स्कूल में टीचर हैं, पिता पेशे से मरीन इंजीनियर हैं, लेकिन मनु के सपने को पूरा करने में वो इतने मशरूफ हैं कि अपने सपनों की नौकरी छोड़ने को तैयार हैं।
पिछले 2 साल से जैसे उसकी कहाँ पे प्रैक्टिस करानी है, नेशनल कैंप में ले जाना है या नेशनल गेम्स में ले जाना है, नॉर्थ जोन कराने हैं, हरियाणा चैंपियनशिप करानी है, बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं जिसमें लगभग रोजाना ट्रेवल करना पड़ता है। आजकल क्या है कि ये जो पिस्टल वगैरह होती है इसके पास आर्म लाइसेंस भी, आर्म स्पोर्ट्स पिस्टल भी खेलती है, तो वो बिना आप गाड़ी के नहीं ले जा सकते हो। 18 की नहीं होगी तब तक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसके बाद तो फिर ये खुद गाड़ी ड्राइव कर लेगी, लाइसेंस हो जाएगा।
मनु ने जिस पिस्टल से निशाना साधकर देश को 2 गोल्ड मेडल जिताए उसकी भी अलग दिलचस्प कहानी है। पिस्टल को विदेश से मंगवाने के लिए लाइसेंस की जरूरत थी। पिता ने 2017 में मई के महीने में जिला प्रशासन में लाइसेंस की अर्जी डाल दी थी। इसके बाद 2 महीने तक अर्जी पर सुनवाई नहीं हुई। फिर मामला मीडिया में आया और प्रशासन ने मामले की सुधली जांच बिठाई। फिर पता चला कि लाइसेंस लेने की वजह में गेम न लिखकर सेल्फ डिफेंस लिख दिया गया था। इस वजह से उनकी अर्जी खारिज हो गई थी। 2.5 महीने बाद उन्हें पिस्टल खरीदने के लिए लाइसेंस मिला। फिलहाल मनु मेक्सिको में है। वो 14 मार्च को देश लौटेंगी और 17 मार्च को फिर ऑस्ट्रेलिया में अगला गेम खेलने रवाना हो जाएंगी। सरोज सिंह, BBC दिल्ली।
और अब सुनते हैं खेल समाचार। श्रीलंका के कोलंबो में त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा है। सूर्यांशी पांडे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जी सूर्यांशी, क्या है मैच का हाल?
अमरीश जी, अगर मैच के हाल की बात करें तो पहला विकेट जब भारत का गिरा तो फिर उम्मीद जो है काफ़ी नाउम्मीद हो गए थे फैंस। लेकिन हम शुरुआत से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे टॉस की। टॉस जो है वो श्रीलंका ने जीता था और टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का उन्होंने फैसला किया था। और अभी का स्कोर अगर हम आपको बताएं तो 11 ओवर हो चुके हैं, 90 पर भारत है और 2 विकेट श्रीलंका ने चटका दिए हैं। मैं माफ़ी चाहूँगी, श्रीलंका ने गेंदबाजी का फैसला किया था टॉस जीतकर। और उसके बाद रोहित शर्मा का पहले ही ओवर में विकेट गिर जाना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा भारतीय जो प्रशंसक हैं उनके लिए। और दसमंथा चमीरा ने ये विकेट लिया था और उसके बाद सुरेश रायना भी 1 रन बनाकर और 3 गेंदों पर वो भी चलते बने और उनका जो विकेट लिया था वो थे फास्ट बॉलर नुवान प्रदीप। तो ये 2 विकेट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट कहे जा सकते हैं भारत के लिए और ये दोनों ही विकेट चले गए हैं। लेकिन अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं शिखर धवन और मनीष पांडे। और साथ ही साथ अमरीश जी, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर क्रिकेट की तरफ हम नज़र डाल रहे हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज हॉकी का भी मुकाबला हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का, और ये मुकाबला मलेशिया के इपोह में खेला गया था जहाँ पर भारत जो है वो 2-4 से हार गया है। लेकिन लास्ट में आते आते रमनदीप सिंह ने 2 गोल दागकर भारत को ये शर्मनाक हार से थोड़ा बचा लिया।
और कोई खेल की खबर है आपके पास?
अमरीश जी, और तो खबर मेरे पास अभी नहीं है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। चलते चलते अपने श्रोताओं को अपडेट देते चलें। रूस का सैन्य विमान था जो कि सीरिया में क्रैश हुआ है। 32 लोगों के मौत की खबर है। रूस का ये सैन्य विमान, रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हादसे में विमान में सवार लगभग सभी यात्री और चालक दल के 6 सदस्यों की मौत हो गई है। रिया नोवोस्ती न्यूज़ एजेंसी की खबरों के अनुसार ये दुर्घटना सीरिया के तटीय शहर लताकिया के पास हुई। शुरुआती खबरों के अनुसार रूस का ये सैन्य विमान खमेमिम एयरबेस पर उतरते हुए हादसे का शिकार हुआ। रूस ने कहा है कि विमान को दुश्मनों ने निशाना नहीं बनाया और शुरुआती जाँच बताती है कि हादसे की वजह तकनीकी खामी हो सकती है। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि bbchindi.com पर तमाम खबरें, विश्लेषण, वीडियो, ऑडियो, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो आप हमारी साइट पर आकर देख सकते हैं। जैसे एक खबर है कि लेनिन को लेकर बड़ा त्रिपुरा में विवाद चल रहा है, तो कौन थे लेनिन, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं। और अब आगे बढ़ने से पहले यानी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। मस्जिदों और मुस्लिम समुदाय के लोगों की दुकानों पर कई हमलों के बाद श्रीलंका सरकार ने देश में आपातकाल की घोषणा की है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सीरिया में रूसी सेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 26 लोगों और 6 क्रू सदस्यों की मौत हो गई है। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन अपने दक्षिण कोरियाई समकक्ष मून जे इन से भारी सुरक्षा वाली सीमा पर अगले महीने मिलने के लिए राजी हो गए हैं। एक वरिष्ठ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार अधिकारी ने कहा है कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान अभी भी व्यवस्थित और व्यापक हिंसा का सामना कर रहे हैं। BBC को पता चला है कि इंग्लैंड में एक पूर्व रूसी जासूस के साथ मृत पाई गई महिला उनकी बेटी है। 66 साल के सर्गेई स्क्रिपल के परिजनों ने बताया है कि 2010 में उनके इंग्लैंड में बसने के बाद उनकी बेटी यूलिया उनके साथ रह रही थी। सीरिया में रूसी सेना ने दमिश्क के बाहर लड़ रहे विद्रोहियों को क्षेत्र से बाहर जाने के लिए एक सुरक्षित रास्ता देने का प्रस्ताव दिया है। BBC समाचार।
اسی کے ساتھ دن بھر کی یہ سبھا یہیں سماپت ہوتی ہے. آپ سے ہماری اگلی ملاقات صبح 6:30 بجے نمسکار بھارت میں ہوگی. اس کارکرم کے دوران اسٹوڈیو سنبھالا شاکر عالم نے اور فیس بک پر اسے آپ تک پہنچایا ابھیمنیو ساہا نے. تو اب امریش دویدی کو دیجیے انومتی اور دیش دنیا کی تمام خبریں ان کا وشلیشن اور اپڈیٹ جاننے کے لیے جڑے رہیے bbchindi.com کے ساتھ. نمسکار.